From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
में टेंपल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन है. इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मार्मन मंडप गायक मंडी द्वारा होगा. गिरजा के सदस्य और पदाधिकारी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं गिरजा के अध्यक्षों के से सलाह और निर्देश प्राप्त करने के लिए. इसका प्रसारण बॉनविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है. बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है. अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजे की प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे.
Brothers and sisters, we welcome you.
भाइयों और बहनों, हम आपके अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर के जनरल सम्मेलन के 184th अर्धवार्षिक अधिवेशन में स्वागत करते हैं और सदस्य और मित्रों को जो यहाँ सम्मेलन केंद्र में और संसार भर में जहाँ कहीं भी भाग ले रहे हैं का हार्दिक गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं. अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है. हम जनरल अधिकारियों और जनरल सहकारी अध्यक्षता का और अन्य जो उपस्थित हैं का कृतज्ञता से अभिनंदन करते हैं. इस सत्र का संगीत मंडप मॉर्मन गायक मंडली द्वारा मैक विलबर्ग और रायन मफी के निर्देशन में होगा और रिचर्ड एलियट और एनरी अंसवर्थ ऑर्गन बजाएंगे. गायक मंडली इस अधिवेशन का आरंभ द मॉर्निंग ब्रेक्स और अब हमारे पक्ष के साथ हाई ऑन द माउंटेन टॉप गाकर करेगी. प्रारंभिक प्रार्थना बहन बानी ऑस्करसन युवती की जनरल अध्यक्षता में अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी.
Amen. Our beloved Heavenly Father, we thy children
gathered. समर्पित करते हैं आपको अपनी आहुति कि हम इंस्पिरेशन सीख कर सकें आपसे. हम बहुत आभारी हैं रेजोल्यूशन ऑफ द गॉस्पेल के लिए, क्योंकि हमारे जीवन को आशीषित करता है. हम आभारी हैं जीसस क्राइस्ट के अटोनमेंट के लिए, जो हमें लगातार आशीषित करता आ रहा है. हम आभारी हैं प्रोफेट थॉमस मॉन्सन के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको आशीषित करेंगे जो भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी आशीषित करें जो कि हमें सुन रहे हैं.
And to serve others.
ताकि हम और दृढ़ता से आपके कमांडमेंट्स को फॉलो कर सकें. और हम सारी आशीष को मांगते हैं जीसस क्राइस्ट के नाम में, आमीन.
अब हमारा सौभाग्य होगा भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन को सुनने का. उनके टिप्पणी के बाद गायक मंडली गाएगी ब्यूटीफुल ज़ायन बिल्ट अबव. गाने के बाद हम अध्यक्ष बॉयड के पैकर 12 प्रेत के परिषद के अध्यक्ष को कृपा कर सुनेंगे. इसके पश्चात एल्डर लिन जे रॉबिन्स 70 की अध्यक्षता के होंगे. बहन शेरिल एस्पलिन प्राथमिक सार्वजनिक अध्यक्षता में दूसरी सलाहकार हमें संबोधित करेंगी.
My brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मैंने महान वैश्विक सम्मेलन में आपका स्वागत करते मुझे अपार खुशी हो रही है. हमारे संसार भर में विभिन्न स्थानों पर उन भाइयों और बहनों को सुनने के लिए और सीखने के लिए मिलकर एकत्रित हुए हैं जिन्हें हमने गिरजाघर के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों के रूप में समर्थन दिया है. उन्होंने इन संदेशों के लिए स्वर्ग से मदद पाने का प्रयास किया है जो वे प्रस्तुत करेंगे, और जो कुछ बोला जाएगा उसके लिए उन्होंने प्रेरणा महसूस की है. यह सम्मेलन महासम्मेलन के रेडियो प्रसारण के 90वें वार्षिकोत्सव का चिन्हित करता है. अक्टूबर 1924 के सम्मेलन के दौरान सत्रों का पहली बार रेडियो प्रसारण गिरजे के अपने रेडियो स्टेशन KSL द्वारा प्रस्तुत किया गया था. यह सम्मेलन महासम्मेलन टेलीविजन प्रसारण के 65वें वर्षवर्ध को भी चिन्हित करता है. अक्टूबर 1949 में महासम्मेलन में सत्रों का पहली बार टेलीविजन संपूर्ण सॉल्ट लेक क्षेत्र में KSL टेलीविजन द्वारा प्रसारित किया गया था. हम वर्तमान मीडिया के आशीषों के आभारी हैं जिसके द्वारा चर्च के लाखों सदस्य के लिए महासम्मेलन को देखना या सुनना संभव हो पाया. इस सप्ताहांत के सत्रों का प्रसारण टेलीविजन, रेडियो, केबल उपकरण प्रसारण, मोबाइल उपकरणों सहित इंटरनेट द्वारा हो रहा है. हमारी मुलाकात हुए पिछले 6 महीनों के दौरान एक मंदिर का समर्पण और एक का पुनर्समर्पण किया गया था. मई में अध्यक्ष उगडोफ ने फोर्ट लॉडेल फोलिडा टेंपल का समर्पण किया था. समर्पण दिवस से पहले एक शानदार सांस्कृतिक समारोह प्रस्तुत किया गया था. अगले दिन रविवार 4 मई को तीन सत्रों में समर्पित किया गया. हाल ही में 2 सप्ताह पहले मुझे ऑगडन टेजा टेंपल को पुनर्स्थापित करने का सौभाग्य मिला, जो कि मूल रूप से अध्यक्ष जोसेफ फोल्डिंग स्मिथ द्वारा 1972 में समर्पित किया गया था. पुनः समापन में एक दिन पूर्व एक विशाल सांस्कृतिक समारोह शुरू हुआ जिसमें बहुत सारे युवाओं ने भाग लिया. विभिन्न कलाकारों के साथ 2 अलग अलग कार्यक्रम हुए. कुल मिलाकर 16,000 युवाओं ने भाग लिया. पुनर्स्मरण की सभाएं अगले दिन हुई. उसके बाद बहुत से पुरुष मार्गदर्शकों, स्त्रियों की सहायता संस्था की मार्गदर्शकों और मंदिर अध्यक्ष, उनके सलाहकारों और उनकी पत्नियों ने भाग लिया. हमारा मंदिर निर्माण मजबूती से जारी है. अगले कुछ महीनों में फिनिक्स एरिजोना टेंपल समर्पित किया जाएगा। अगले साल 2015 में हम कम से कम 5 मंदिरों के समर्पण या पुनर्समर्पण की आशा करते हैं। अधिक भी संभव है, यह कुछ पूरा होने पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अप्रैल में बताया था, जब पूर्व घोषित मंदिरों का निर्माण और समर्पण पूरा हो जाएगा तो हमारे पास 170 कार्यशील मंदिर हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने प्रयासों को पूर्व घोषित मंदिरों पर केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में हम किसी नए मंदिर की घोषणा नहीं करेंगे। हालांकि भविष्य में हम जरूरत महसूस करते हैं और स्थान खोज लेते हैं तो अतिरिक्त मंदिरों की घोषणा की जाएंगी। मर्जे का विकास जारी है। अब हम 15 मिलियन से अधिक मजबूत और निरंतर संख्या में बढ़ रहे हैं। हमारा प्रचारक प्रयास बिना रुकावट के आगे बढ़ रहा है। हमारे पास 88,000 से अधिक सेवा कर रहे प्रचारक विश्व भर में सुसमाचार बांट रहे हैं। हम पुनः पुष्टि करते हैं कि हमारे प्रचारक कार्य एक पौरित्य दायित्व है और हम सभी योग्य और सक्षम युवकों को सेवा करने के लिए उत्साहित करते हैं। हम युवतियों के बहुत आभारी हैं जो इस सेवा को करती हैं। वे एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यद्यपि इस प्रचारक कार्य के लिए युवकों के समान वे बाध्य नहीं है। अब मैं आपको उन भाइयों और बहनों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूं जो आज और कल हमारे सम्मेलन सत्रों में भाग लेंगे। वे सभी जिन्हें बोलने के लिए कहा गया है इसे अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समझते हैं। जब हम सुनते हैं हमारे हृदयों को छुआ जाए, हमारे विश्वासों में बढ़ोतरी हो। मैं यीशु मसीह के नाम में विनम्र प्रार्थना करता हूं, आमीन।
Several years ago, Sister Packer and I went to the Oxford University.
कई सालों पहले बहन पैकर और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे. हम अपने सातवें परदादा के लेख को ढूंढ रहे थे. ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट कॉलेज में प्रधान डॉक्टर पॉपलवेल दयालु थे. कॉलेज कार्यकर्ता लेखा का रिकॉर्ड लाए थे. वहां पर 1583 वर्ष में हमने अपने पूर्वज के नाम जॉन पैकर को पाया. अगले वर्ष हम ऑक्सफोर्ड में लौटे एक सुंदर उपहार का सेंट क्राइस्ट कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए देने गए थे. डॉक्टर पॉपलवेल को यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. शायद वे सोच रहे थे हम सोच में ईसाई नहीं हैं. तो उन्होंने कॉलेज चैपल लेन को किताबें लेने के लिए बुलाया था. चैपलिन को धर्मशास्त्र देने से पहले मैंने टॉपिकल गाइड को खोला और इस एक विषय का संदर्भ दिया. 18 पेज बहुत अच्छे से छपी एक खाली जगह विषय यीशु मसीह से जोड़े संदर्भ की सूची दिखाई थी. ये एक सबसे महत्वपूर्ण उद्धारकर्ता के विषय में समझदारी का धर्मशास्त्र संदर्भ का संकलन है कि संसार के इतिहास में कभी ऐसा एकत्र किया हुआ. पुराने और नया नियम में से मार्मन की पुस्तक का अनमोल मोती से गवाही थी. ये लगातार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिशन के अनुकूल गवाही है. उसका मैंने उनसे कहा, एक तरफ से दूसरी तरफ, ऊपर से नीचे, पुस्तक के पुस्तक, विषय से विषय, आप पाएंगे कि यह लगातार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिशन के अनुकूल गवाही है. उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी शिक्षा, उसका क्रूस पर चढ़ना, उसका पुनरुत्थान और उसका प्रायश्चित है के संदर्भ सूची उद्धारकर्ता की कुछ शिक्षाओं को चैपलिन के साथ बांटन के बाद वातावरण बदल गया था और उसने हमें सुविधाओं की सैर कराई. शामिल है एक हाल है ही की खुदाई को प्रदर्शित किया जा किया जो रोमन दिनों की तारीख की थी. उसके शब्दों में उद्धारकर्ता घोषित करता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ. बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता. और मार्मन की पुस्तक में से वह घोषित करता है, सुनो और मैं वही हूँ जो कि अपने लोगों को मुक्त कराने के लिए सृष्टि की नींव के समय से तैयार था. सुनो, मैं यीशु मसीह हूँ. मुझी में सारा मनुष्य समाज जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे वे अनंत के लिए प्रकाश पाएंगे और वे मेरे पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे. यहाँ पर कई कई अन्य संदर्भ जो यीशु मसीह की पवित्र भूमिका, मुक्ति दाता के रूप में काम की उनके लिए जो कभी रहे थे या वो जो नश्वरता में आने वाले हैं, सभी के लिए घोषणा करते हैं. यीशु मसीह के प्रायश्चित द्वारा हम सभी मनुष्य के पतन से मुक्त हुए. आदम और हवा के आदन की बगीचे में मना किया हुआ फल खाना कुरिन्थियों में बयान किया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जिए जाएंगे. मार्मन की पुस्तक सिखाती है, पापों के लिए प्रायश्चित करना हितकारी है, नहीं तो मानव जाति को नष्ट करना से बचाया ही नहीं जो सकता. हाँ, सभी कठोर में सभी पतित और भटके हुए हैं और नष्ट होंगे. केवल प्रायश्चित जो कि हितकारी है वो होगा अपरिमित और असीम अनंत बलिदान. हम संपूर्ण जीवन शायद नहीं जी सकते और हमारी गलतियों के लिए जुमाने हैं, परंतु धरती पर आने से पहले हमने उसके नियम के विषय से सहमति की थी और उन नियमों का उल्लंघन करने पर सजा पाना भी स्वीकार की था.
उद्धारकर्ता का प्रायश्चित घड़ा है। यीशु मसीह पुनरुत्थान मसीह है। हम उसकी उपासना करते हैं और उसने उसे पहचानते हैं और उसके दर्द के लिए जो उसने हम सभी के लिए और दर्द हम में से हर एक के लिए अनंत अंत तक सहा था, दोनों में गतसमनी के बगीचे और क्रूस पर उसने सारे बड़े अपमान सहे थे और अपने पवित्र भूमिका और उद्देश्य की अनंत समझदारी से के साथ। वे जो पश्चाताप करेंगे और पापों को छोड़ देंगे वे उसके करुणा भरे फैले हुए हाथ और पाएंगे को पाएंगे। वे जो उसे सुनेंगे और उसके चुने सेवकों के शब्दों पर कान लगाएंगे को शांति और समझदारी प्राप्त होगी, तब भी जब वे भरी दर्द और दुखों में होंगे। उसके बलिदान का परिणाम हमें पापों के प्रभाव से आजाद करना है कि सभी के सारे दोष मिट जाएं और आशा का एहसास हो। यीशु मसीह की महिमा और अनुग्रह सीमित नहीं है उनके लिए जिन्होंने पाप चाहे जाने के या अनजाने में किए हों, परंतु यह अनंत शांति का वादा है उनके लिए जो ग्रहण करेंगे और उसको और उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। उसकी दया की सब से बड़ी चंगाई है यहाँ तक घायल मासूमों के लिए भी। हाल ही में मुझे एक महिला का पत्र मिला जिसने अपने जीवन में बड़ी तकलीफें उठा रही थी। कुछ बहुत गलत है जिसे उसने जाना नहीं परंतु संकेत करता उसके विरुद्ध हुआ है। वह स्वीकारती है कि बड़ी कड़वाहट के एहसास से संघर्ष कर रही है। उसके गुस्से में वह दिमागी तौर से रो रही थी। किसी को उस बुरी गलती के लिए भुगतान करना चाहिए। इस असीम दुखों और प्रश्न चिन्ह के लम्हों में उसने लिखा था कि उसके दिल में तुरंत जवाब आया था, किसी ने पहले से ही भुगतान कर दिया। यदि हम उद्धारकर्ता के बलिदान हमारे लिए क्या कर सकता है के लिए जागरूक नहीं है, हम जीवन भर पछतावा करेंगे और हमने कुछ तो जो बहुत गलत था किया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है। गलतियों के साथ दोषी होने का धोया जा सकता है। यदि हम उसके प्रायश्चित को खोजकर समझें, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी संसारिक सेवकाई और उसका पवित्र मिशन उद्धारकर्ता के रूप के प्रति हमें ग्रहण श्रद्धा आएगी। अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह का गिरजाघर को पुनर्स्थापित किया गया संसार भर में उद्धारकर्ता के जीवन का और शिक्षा का ज्ञान देने को गिरजा है। यह महान सम्मेलन का प्रकाशित 94 भाषाओं में सॉल्ट लेक सैटेलाइट द्वारा 101 देशों में किया जा रहा है, परंतु ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध है जहां पर गिरजा है। हमारे पास 3000 स्टेक हैं, 88,000 से ज्यादा पूरे समय के हमारे प्रचारक की सेना है और 15 मिलियन से अधिक गिरजा के सदस्यता है। परंतु कोई बात नहीं गिरजे का की सशंसा कितनी बड़ी होगी या कितने हजारों सदस्य हमारे पद तक पहुंचेंगे, कोई बात नहीं कितने महाद्वीप और देशों में हम प्रचारक जाएंगे या हम कितनी भिन्न भाषाएं बोलते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्ची सफलता उसके प्रत्येक सदस्यों की आत्मिक शक्ति द्वारा नापा जा सकता है। हमें दृढ़ विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है जो कि मसीह के ईमानदार शिष्यों के दिलों में पाए जाते हैं। मुक्ति की आशा की एक गवाही जिसे कभी भी नापी या गिनी नहीं जा सकती, यीशु मसीह उस आशा का सोत्र है। हम युवा और वृद्ध शादीशुदा और अकेले की गवाही की को मजबूती देने की को खोजना है। हमें यीशु मसीह के सुसमाचार की शिक्षा पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को देने की जरूरत है जो किसी भी देश का नागरिकता के अमीर और गरीब हो। हमें उन सभी को ढूंढना है जो दूर चले गए हैं और उन्हें वापस के लिए सहायता करनी है। हम सभी को बुद्धि और अंतर्दृष्टि और आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उस प्रकार मसीह भी है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। प्रत्येक सदस्य यीशु मसीह की शिक्षा की और जीवन की गवाही देता है। हम विरोधी की सेना के साथ युद्ध में हैं और हमें और हर किसी को हम सभी की जरूरत है। यदि हमें उद्धारकर्ता काम में जो हमें करने के लिए है सफलता पानी है, हम सोचेंगे मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं। सच में जो स्मिथ ने उस समय अकेला महसूस किया होगा, वह महानता के लिए खड़ा हुआ था, परंतु उसने 14 साल के बालक के रूप में शुरू किया था, जिसके पास प्रश्न था, कौन से गिरजे में से मैं जुड़ूं। जो स्मिथ का विश्वास और उद्धारकर्ता की गवाही बढ़ती गई थी, वैसे हमारी भी बढ़नी चाहिए। जोसेफ ने घुटनों पर प्रार्थना की और क्या ही अद्भुत चीज उस प्रार्थना और प्रथम दर्शन के परिणाम के रूप में मिला है। 12 प्रेरितों के एक के रूप में मैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही देता हूं, वह जीवित है, वह हमारा मुक्तिदाता और उद्धार करता है। मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सारी मानव जाति बचाई जाएगी। वह इस गिरजा का नेतृत्व करता है। वह अपने सेवकों के लिए अजनबी नहीं है। जैसे हम भविष्य की ओर शांत भरोसे से बढ़ रहे हैं, उसकी आत्मा हमारे साथ होगी। उसकी शक्ति और आशीष और जीवनों को निर्देशन देने और उनको जो सच्चाई और योग्यता के से ढूंढते हैं का कोई अंत नहीं होगा। मैं उसके नाम में गवाही देता हूं, आमीन।
Which way do you face?
आपका मुंह किस ओर होता है? अध्यक्ष बॉयर के पैकर के इस उलझन भरे प्रश्न से मैं उस समय चकित हो गया जब हम नए सत्र के रूप में मेरी नियुक्ति के पहले कार्यभार की यात्रा कर रहे थे। प्रश्न के संदर्भ की व्याख्या न होने के कारण मैं उलझन में पड़ गया था। एक सत्र, उन्होंने कहा, भविष्यवक्ता के लिए लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि लोगों के लिए भविष्यवक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। कभी ना भूलें आपका मुख्य स्रोत होना चाहिए। यह एक प्रभावशाली पाठ था। परमेश्वर के सामने दूसरों को खुश करने का अर्थ है पहली और दूसरी बड़ी आज्ञाओं के विपरीत करना। यह किस ओर हमारा मुंह करना चाहिए नहीं भूलना है। और फिर भी हम सब मनुष्य के भय इस कारण गलती करते हैं। इजाया में प्रभु हमें चेतावनी देता है, तुम लोगों की नाम धराई से मत डरो। लिहाई के सपने में यह भय उन लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण शुरू हुआ था जो बड़े विशाल भवन में उसकी ओर उंगली उठा रहे थे। इस कारण बहुत से लज्जित होकर भूल गए कि किस ओर मुंह करके वृक्ष की तरफ जाना और वापस आना है। साथियों का यह दबाव व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करता है। यदि व्यवहार को ना भी करें, उसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को गलत काम करने का दोषी महसूस करता है। हम उनके साथ सम्मानजनक संबंध रखने का प्रयास करते हैं जो उंगलियां उठाते हैं। ये फंदा बड़ी चलाकी से हमारी संवेदनशीलता को आकर्षित करता है, जिससे प्रभावित होकर हम उस कार्य को करने लगते हैं जिसकी परमेश्वर निंदा करता है। जिनका विश्वास कमजोर होता है उनके लिए यह बहुत बड़ी ठोकर का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए कुछ नौजवान प्रचारक लोगों के इस भय को प्रचार क्षेत्र में लेकर आते हैं और अपने साथी के गंभीर आलोचना को वे मिशन अध्यक्ष को नहीं बताते, क्योंकि वे अपने गलत साथी को नाराज करना नहीं चाहते। चरित्र के निर्णय पहली और दूसरी बड़ी आज्ञाओं को सही क्रम में याद रखने में बनाए जाते हैं। जब ये उलझन में पड़े प्रचारक महसूस करते हैं कि वे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हैं, न कि उनके साथी के प्रति, तो वे सही दिशा की ओर मुंह करते हैं। जवानी के 22वें साल में जोसेफ स्मिथ भी भूल गए थे कि उन्हें किस ओर मुंह करना था जब उन्होंने पुस्तक के 116 पृष्ठों को मार्टिन हैरिस को देने के लिए बार बार प्रभु की अनुमति मांगी थी। शायद जोसेफ स्मिथ मार्टिन हैरिस को उसकी सहायता के प्रति आभार प्रकट करना चाहते थे। हम जानते हैं कि जोसेफ उनके विरुद्ध फैलाई जा रही गलत और झूठी बातों के समय अनचिंतित गवाहों का उनके साथ खड़े होने को लेकर वह बहुत चिंतित थे। जोसेफ के कोई भी कारण रहे हों या जितने भी वे उचित लगते हों, प्रभु ने उन्हें क्षमा नहीं किया और उससे कठोर शब्दों में कहा था, कितनी बार तुमने गलती की है और मनुष्य के अत्याचारों को सहा है, क्योंकि देखो तुमने मनुष्यों से अधिक परमेश्वर से भय करना चाहिए। इस मार्मिक अनुभव ने जोसेफ को इसके बाद हमेशा स्मरण रखने में मदद की थी कि उसे किस ओर मुंह करना चाहिए। जब व्यक्ति मनुष्यों के हाथ लज्जित होने से बचने की कोशिश करते हैं तो वे अनजाने में परमेश्वर के सम्मुख लज्जित होते हैं। व्यक्ति सोच सकता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना उसी दौरान लोगों की अवज्ञा को नजरअंदाज करना निष्पक्षता नहीं बल्कि दुराहापन या दो चेहरे रखना या दो स्वामियों की सेवा करने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन साहस की असली पहचान मनुष्य के भय पर विजय पाने से होती है। उदाहरण के लिए डैनियल की प्रार्थनाओं ने शेरों का सामना करने में मदद की थी, लेकिन दारा को हराने की सोच से उसे बहादुर बनाया था। इस प्रकार का साहस परमेश्वर का भय रखने वालों के लिए आत्मा का उपहार है जो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। रानी एस्तर की प्रार्थनाओं ने उसे ऐसा ही साहस दिया था जब उसने अपने पति राजा शेरश का यह जानते हुए सामना किया था कि उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। साहस मात्र एक मूलभूत गुण नहीं है, बल्कि जैसा सीएस लुईस ने देखा था, साहस प्रत्येक गुण की परीक्षा का क्षण है। पिलातुस के लिए यह तब तक दयापूर्ण था तब तक जोखिम भरा नहीं हो गया। राजा हेरोदस यूहन्ना बपतिस्मा देने का सिर काटने के अनुरोध के कारण दुखी था, लेकिन उन्हें खुश करना चाहता था जो उसके साथ बैठे थे। राजा नोआ अभिनंदी को स्वतंत्र करने के लिए तैयार था, लेकिन अपने दुष्ट याजकों के कारण उसने ऐसा नहीं किया। राजा शाऊल ने प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया था। सियोन पर्वत की तलहटी पर विरोधी इसराइलों को शांत करने के लिए हारून ने सोने का बछड़ा बनाया था। वह यह भूल गया था कि उसे किस तरफ मुंह करना था। नए नियम के बहुत से मुख्य शासक प्रभु पर विश्वास करते थे, लेकिन फरीसियों के कारण उन्होंने इसका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे भयभीत थे कि कहीं उन्हें आराधनालय से बाहर न कर दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक वे मनुष्य की प्रशंसा चाहते थे। धर्मशास्त्र ऐसे बहुत से धारणों से भरे हुए हैं। देखो, मैं निर्भीकता से बोलता हूँ और मैं नहीं डरता कि लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि परिपूर्ण प्रेम सारा डर दूर कर देता है। नीफाई, इसीलिए जो बातें संसार को पसंद है मैं उन्हें नहीं लिखूंगा, लेकिन जो बातें परमेश्वर को पसंद है जो संसार को नहीं है उन्हें लिखूंगा। सेनापति मोरोनाई, देखो मैं मोरोनाई तुम्हारा मुख्य सेनापति हूँ। मैं सत्ता नहीं चाहता परंतु उसे अलग रखना चाहता हूँ। मैं संसार का गौरव नहीं परंतु अपने परमेश्वर की महिमा और अपने देश की स्वतंत्रता और उसका कल्याण चाहता हूँ। मोरोनाई उसे याद करने में बहुत साहसी था जिसने उसका सामना किया था कि उसके विषय में यह कहा गया था, यदि सारे मनुष्य मोरोनाई के सामने के समान रहे और थे और कभी भी होंगे तो देखो नरक की शक्तियां सदा के लिए नष्ट हो जाती। हाँ, शैतान मानव संतान की हृदय को कभी भी अपने वश में नहीं कर पाता। युगों से भविष्यवक्ता का हमेशा उंगली उठाकर मजाक उड़ाकर आक्रमण किया गया है। क्यों? धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराधी सत्य को कठोर मानते हैं, क्योंकि उन्हें यह मध्य से काटती है। या अध्यक्ष भैरव बिल्ली ने देखा था, जब चिड़िया पर चोट लगती है तो वह फड़फड़ाती है। उनकी मजाक भरी प्रतिक्रिया वास्तव में अपराध को स्वयं स्वीकार करने की कोशिश है, ठीक जैसे कोरिहर ने आखिर में स्वीकार किया था, मैं सदा से जानता था कि परमेश्वर था। कोरिहर अपने धोखे से इतना निश्चित था कि उसने अपने झूठ पर विश्वास कर लिया था। मजाक उड़ाने वाले अक्सर भविष्यवक्ता पर दोष लगाते हैं कि वर्तमान समय से ये नहीं होते या अत्याचार करते हैं, वे उकसाने का प्रयास करते और यहाँ तक कि गिरजे के को परमेश्वर के मानकों का नीचा दिखाकर अपने स्वयं के अनुचित व्यवहार के स्तर तक लाने के लिए दबाव डालते हैं, जो कि एल्डर नील ए मैक्सवेल के शब्दों में आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है, न कि आत्मोन्नति और पश्चाताप की ओर। प्रभु के मानकों को समाज के स्तर तक नीचा करने का अनुचित व्यवहार परमेश्वर की निंदा है। नफाइयों के बीच बहुत से गिरजों ने उद्धारकर्ता के उनसे भेंट करने के दो शताब्दियों पश्चात सिद्धार्थ का सरलीकरण आरंभ कर दिया था। एल्डर हॉलैंड के वाक्यांश को लिया गया है, जब आप चौथी नफी के इस अंश को सुनते हैं, इसकी समय हमारी समय की बातों से तुलना करें, और ऐसा हुआ था कि जब 200 वर्ष बीस गए तब तक प्रदेश में कई गिरजे हो चुके थे, हाँ कई गिरजे हो गए थे जो मसीह की घोषणा करते थे, और फिर भी वे उसके सुसमाचार के अधिकांश भाग को नकारते थे, इतना अधिक कि उनमें से हर प्रकार की बुराई आ गई और ऐसी चीजें करने लगे जो उनके लिए पावन थी और जिसे अयोग्यता के कारण वर्जित किया गया था। ऐसे ही बातें आजकल हो रही हैं। कुछ सदस्य नहीं जानते थे कि उसी फंदे में फंस रहे हैं जब वे अपने पूर्वजों की उन परंपराओं को स्वीकार करने के लिए प्रभावित होते हैं जो सुसमाचार संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं। फिर भी कुछ आत्मछल और आत्मत्याग वच याचना या मांग करते हैं कि धर्माध्यक्ष मंदिर, अनुशंसा विद्यालय या प्रचारक आवेदन के लिए स्तर कम कर दें। इस दबाव में धर्माध्यक्ष बने रहना सरल नहीं है। फिर भी जिस प्रकार उद्धारकर्ता ने मंदिर की पवित्रता को बचाने के लिए उसकी सफाई की थी, आज धर्माध्यक्षों को साहस से मंदिर के स्तर को बचाने के लिए कहा जाता है। यह उद्धारकर्ता ही जिसने कहा था, मैं अपने लोगों पर अपने आप को दया में प्रकट करूंगा यदि मेरे लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते और इस पवित्र घर को अशुद्ध नहीं करते। उद्धारकर्ता हमारे महान उदाहरण ने हमें हमेशा पिता की ओर मुंह किया है। उसने अपने साथियों से प्रेम और उनकी सेवा की थी, लेकिन कहा था, मुझे लोगों से कोई सम्मान नहीं चाहिए। वह उन्हें चाहता था कि जिन्हें वह शिक्षा देता है, लेकिन वह उनकी प्रशंसा नहीं चाहता था। जब उदारता का कार्य करता था, जैसे चंगा करना, उसके साथ अक्सर एक निवेदन होता था, किसी से न कहना, कुछ हद तक ऐसा प्रसिद्धि ना पाने के लिए करना जो कि उससे बचने के लिए बावजूद मिली भी थी। उसने दोष लगाया था कि फरीसी अच्छे कार्य मात्र लोगों को दिखाने के लिए करते थे। उद्धारकर्ता एकमात्र परिपूर्ण व्यक्ति अत्यंत निडर था। उनके जीवन में उसने बहुत से दोष लगाने वालों के घावों का सामना किया था, लेकिन वह कभी उनकी उंगली उठाए जाने से दबाव में नहीं आया। वही एकमात्र व्यक्ति है जो एक बार भी नहीं भूला कि उससे किस ओर मुंह करना था। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न होता है, और मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा को चाहता हूँ। तीसरी नेफाई अध्याय 11 और तीसरी नेफाई अध्याय 28 के बीच उद्धारकर्ता ने पिता शब्द का कम से कम 163 बार उपयोग किया था। इसने नफाइयों को बहुत स्पष्ट किया था कि वह अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हर संभव तरीके से वह अपने पिता का परिपूर्ण शिष्य था। वह अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने में इतना परिपूर्ण था कि उद्धारकर्ता को जाना संक्षेप में
indistinguishable from
संक्षेप में वह पिता से किसी तरह से अलग किए जाने के योग्य नहीं था। उसका पिता वह एक थे। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे किस तरफ मुंह करना चाहिए था। यह मेरी प्रार्थना है कि उसका उदाहरण हम दूसरों की चापलूसी के फंदों या अपने स्वयं के धोखे में फंसने की हिम्मत दें। यह हमें डराने वालों से कभी न डरने न ही राजी होने का साहस दे। यह हमें बिना नाम कमाए भलाई का काम करते रहने की प्रेरणा दे, न कि लोगों का आदर पाने के लिए। और उसके अतुलनीय उदाहरण हमेशा याद रखने में मदद करे कि पहली और महान आज्ञा कौन सी है। जब दूसरे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने की मांग करते हैं, तो हम हमेशा याद रखें कि हम किसके शिष्य हैं और हमारा मुंह किस ओर होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
A group of young women once asked me.
परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को चंगा और नवीनकरण करती है। प्रभु भोज की
I wish when I was your age, I had understood the significance of the sacrament better than I did. I wish I had understood the sacrament in the way that Elder Jeffrey R. Holland described.
एक बार युवती के एक जन ने मुझसे पूछा, आपकी क्या इच्छा थी कि आप जानते थे जब हमारी आयु के थे, यदि मुझे इस प्रश्न का उत्तर आज देना हो तो मैं इस सोच को शामिल करूंगी। मेरी इच्छा थी कि जब मैं तुम्हारी आयु की थी, मुझे प्रभु भोज का महत्व अब से बेहतर समझ आता। काश मैंने प्रभु भोज जैसे प्रतिभोज एक आत्मिक शक्ति देने वाला अनुभव तब बनता है जब हम प्रभु भोज की प्रार्थना को सुनते हैं और अपने अनुबंधों के प्रति पुनः विचार होते हैं। इस वादे के बारे में बोलते हुए अध्यक्ष हेनरी बी आयरन ने सिखाया, इसका मतलब है कि हम अपने आप को उसकी तरह देखें, हम उसे अपने जीवन में पहले रखेंगे, हम चाहेंगे जो वो चाहता है उसके बजाय हम जो चाहते हैं, जो दुनिया में हमें सिखाना चाहती है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम यह भी अनुबंध करते हैं कि हम यीशु मसीह को हमेशा याद रखेंगे, जिस रात से पहले वह सूली पर चढ़ाया गया, मसीह ने अपने प्रेरितों को अपने चारों तरफ इकट्ठा किया और प्रभु प्रतिभोज को स्थापित किया। उन्होंने रोटी को तोड़ा और उसे आशीषित किया और कहा, लो खाओ, ये मेरे याद में है जो हमारी फिरौती में देता हूँ। अगला उसने मदिरा का पाला दिया, धन्यवाद दिया, उसने प्रेरितों को पाने के लिए दिया और कहा, मेरे रक्त की याद में है जो कि ये बहाया गया है उन सभी के लिए जो मेरे नाम में विश्वास करेंगे। नफाइटियों के बीच और फिर से अंतिम दिनों के गिरजाघर की पुनः स्थापना पर उसने दोहराया कि हमें प्रतिभोज उसकी याद में लेना है। जैसे कि हम प्रतिभोज लेते हैं, हम साक्षी देते हैं परमेश्वर की कि हम उसके पुत्र को हमेशा याद रखेंगे, न केवल कुछ संक्षिप्त प्रतिभोज धर्मविधियों के दौरान। उसका मतलब यह है कि हम उद्धारकर्ता के उदाहरण के और लगातार देखेंगे, उसकी मार्ग देखेंगे, उसकी सोच अपने चयन और अपने कार्य में। प्रभु भोज की प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हमें आज्ञा पालन करना है। प्रभु भोज में हम एक अवसर देते हैं और एक अवसर देता है प्रभु परमेश्वर की तरफ हमें मन और इच्छा को मोड़ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे जीवन में सुसमाचार की शक्ति और बड़ी अंतिम और आत्मिकता लाता है। प्रभु भोज हमें अवसर देता है कि एक सच्चे आत्मिक अनुभव की जैसे हम विचारते हैं उद्धारकर्ता की मुक्ति और उसकी सक्षम प्रयासित की शक्ति से। एक युवती की अध्यक्ष ने हाल ही में सिखाया उस शक्ति के विषय में जो हमें मिलती है। हम जब सोचते हैं कर भोजन करते हैं, पर्सनल प्रोग्रेस में एक आवश्यकता को पूर्ण करना लिया। उसने अपना उद्देश्य प्रभु भोज के गायन और प्रार्थना के शब्दों पर केंद्रित किया। हर हफ्ते उसने प्रभु भोज के दौरान अपना आत्मा मूल्यांकन किया। उसने अपनी गलतियों को याद किया जो कि उसने की थी और उसने वादा किया कि अगले हफ्ते वह इससे बेहतर होगी। वह आभारी थी सही करने की और इच्छा होने की। इस अनुबंध को देखते हुए उसने कहा कि मैं कार्य कर रही थी बलिदान के पश्चात पर। एक रविवार पुनः मूल्यांकन के बाद उसे उदासी और निराशावादी महसूस हुआ। वह देख सकती थी कि वह इस बार गलतियां दोहरा रही है हफ्ते दर हफ्ते, परंतु उसने उसे एक स्पष्ट धारणा हुई कि प्रायश्चित के एक बड़े हिस्से को भूल रही थी। मसीह शक्ति देते हुए वह हर समय भूल रही थी कि उद्धारकर्ता उसकी मदद को वह बनाना चाहती थी कि मैं कर रही थी और अपनी क्षमता से अधिक सेवा करने की। इसे दिमाग में रखते हुए उसने फिर से बीतते हुए हफ्ते भर विचार किया। उसने कहा, मेरी उदासी में एक खुशी का भावना टूटी। जैसे मैंने नोट किया कि उसने मुझे बहुत से अवसर और योग्यता दी थी, मैंने नोट किया कि आभारी होने से मुझे मैं योग्यता थी कि मैं आदत डालूं अपने बच्चे की जरूरत के प्रति। वह सब स्पष्ट नहीं थी। मैंने नोट किया कि एक दिन में एक से ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, वहाँ मैं एक मित्र को बढ़ावे के शब्द दे रही थी। मैंने धैर्य एक ऐसी परिस्थिति में दिखाया था जिसमें अधिकतर मेरा विपरीत मुझसे निकला। समाप्ति में उसने कहा, जैसे कि मैंने परमेश्वर की का धन्यवाद किया उद्धारकर्ता की उदारता शक्ति से, उसने अपने जीवन में मुझे आशीर्वाद महसूस हुआ। प्रायश्चित की रीति पर जिस पर मैंने कार्य आ रही थी, मैं एक नवीन की आशा से अगले हफ्ते की ओर देखने लगी। एल्डर बेलर ने सिखाया किस तरह से प्रभु प्रतिभोज एक चंगाई और सफाई का अनुभव हो सकता है. उसने कहा, कौन है हमारे बीच जिसकी आत्मा घायल नहीं है? शब्द, सोच और कार्य से साबित है कि साबित हम वह चीजें करते हैं जिसके लिए हम क्षमा हो और इच्छा को माफी मांगने की विधि है अपने पापों का पश्चाताप करना. इन लोगों के पास जाना जिनके विरुद्ध पाप या अतिक्रम किया हो और उसने क्षमा प्राप्त करना और उसके बाद प्रतिभोज की मेज की को ठीक कर जहां उसने अपने ईमानदारी से प्रायश्चित किया और यह अपने आप को सही वातावरण में डाला है तो हमें माफ किया जाएगा और हमारी आत्माओं को चंगाई प्राप्त होगी. हमारी जख्मी आत्मा और नवीनीकरणीय केवल इसलिए नहीं हो पा सकती कि रोटी और अपने उद्धारकर्ता के शरीर और रक्त के बलिदान याद दिलाने हैं, परंतु क्योंकि वह चिन्ह याद दिलाते हैं कि वह हमारे जीवन की रोटी और जीवित जल हमेशा रहेंगी. प्रभु भोज इन फाइटी को प्रायश्चित करने के लिए के बाद यीशु ने कहा, वह जो रोटी खाएगा मेरे शरीर को अपनी आत्मा तक खाएगा और जो मदिरा को पिएगा वह मेरे रक्त को अपनी आत्मा तक पिएगा और अपनी आत्मा कभी नहीं भूखी नहीं रहेगी परंतु भरी रहेगी. और जब वह भीड़ ने सब खा चुके देखा तब वह आत्मा से भर गए. इन शब्दों के साथ मसीह देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को चंगा अनवीकरण करती है. प्रतिभोज की आशीष का वादा है कि हमारे साथ उसकी आत्मा हमेशा रहेगी. जब मैं प्रतिभोज लेता हूँ कभी कभी मैं अपने दिमाग में पुनर्स्थापित उदारता की उस चित्रकारिता की स्वीकारता को देखता हूँ जिसमें वह अपनी बाहें फैलाए. जैसे तैयार करते हैं हम प्रेरण से ग्रहण करने के लिए मुझे वह चित्रकारी पसंद है. जब मैं प्रभु भोज के प्राक्षण के दौरान सोचता हूँ कि मेरी आत्मा उठ जाती है और मुझे उद्धारकर्ता के शब्द बिल्कुल सुनाई नहीं देते. देखो मेरी दयालुता की बाहें तुम्हारी ओर बढ़ रही है और जो भी कोई आएगा उसे ग्रहण करूँगा और आशीषित है जो मेरे पास आते हैं. रूहानी पुरोहिती उद्धारकर्ता को जब हारूनी पुरोहित उद्धारकर्ता को जब हम प्रभु भोज को तैयार आशीषित देते हैं जैसा कि एक पुरोहित पद अपने हाथों को आगे करता है हमें उस पवित्र टुकड़ों को लेने के लिए यह बिल्कुल उद्धारकर्ता के खुद की बाहें हैं जो वह बढ़ा रहा है हम सब की और निमंत्रण देते हुए कि हम उसके अनमोल तोहफे को उदाहरण करें जो कि प्रेम से उपलब्ध है. उसके प्रायश्चित के बलिदान से पश्चाताप संतावना और आशा. जितना हम प्रतिभोज के महत्व के बारे में सोचेंगे उतना ही पवित्र और यह बनेगा. यह कि एक वर्ष के पिता ने अपने पुत्र से व्यक्त किया जब उसने कहा उसको पूछा आपको देखता हूँ आपको सुनाई नहीं देता आपके लिए मुश्किल होता है वहाँ पहुँचना क्या क्यों आप क्यों गिरजा जाते हो. पिता ने उत्तर दिया वह प्रतिभोज है मैं प्रभु भोज लेने जाता हूँ. हम सब प्रभु भोज की सभा में तैयार कर आएंगे एक सच्चा आत्मिक अनुभव एक पवित्र भोज आत्मा का एक नवीनीकरण है. मैं जानती हूँ कि हमारा स्वर्गीय पिता और हमारा उद्धारकर्ता जीवित है. मैं आभारी हूँ प्रतिभोज के अवसर के लिए जो उसके प्रेम को महसूस और उसकी आत्मा का सेवन कराती है. यीशु मसीह के नाम में आमीन.
The choir and congregation.
और अब गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़ी होकर गाएगी. Guide us, O thou great Jehovah. गीत के समापन पर हम एल्डर ची होंग वांग सत्तर के को सुनेंगे, जो अपना संदेश अपनी मूल भाषा कैंटनीज में देंगे। अंग्रेजी उपशीर्षक सम्मेलन केंद्र की स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे। उनके बाद एल्डर डीट और क्रिस्टोफरसन बोलेंगे 12 प्रेरित के परिषद से। एल्डर डीट और क्रिस्टोफरसन की टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली गाएगी इफ आई लिसन विद माय हार्ट। ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन है।
先知多馬孟宣會長經常邀請我哋去主動救援。
我們經常Thomas S. Monson को कहते सुनते हैं बचाव कार्य के लिए पहुँचे। नया नियम का एक लेख मेरे ध्यान में आता है। यह एक संपूर्ण उदाहरण है कि कैसे सदस्य और प्रचारक वार्ड परिषद द्वारा कार्य को एक साथ करने के लिए एकता में बचाव करने पहुँचे। यह कहानी मरकुस 2:5 में पाई जाती है। मैंने पाया कि यीशु अनुभवों का प्रयोग कर हमें ऐसे सिद्धांत या नियम की शिक्षा देते थे जो हमेशा से अधिक शिक्षाप्रद होते हैं। इस लेख का एक चरित्र लकवे का रोगी एक व्यक्ति है, जैसे कोई जो बिना किसी के सहारे के हिल भी ना पाता था। इस व्यक्ति को मदद के लिए इंतजार करना पड़ता था। हमारे दिन में ऐसा शायद ही हो सकता है। चार लोग एक आदमी के घर भेंट करने जाते हों जो लकवे से पीड़ित हो। वह उनके पेशाब द्वारा दिया गया काम को पूरा करते हैं। मैं लगभग देख सकता हूँ मैं उनमें से एक सहायता संस्था से आती है, एक एल्डर परिषद से, एक हरूनी पुरोहित से और आखिरी परंतु अंतिम नहीं एक पूरे समय का प्रचारक है। हाल ही के वार्ड परिषद में एक साथ ऐसे व्यक्तिगत जरूरतमंदों के विषय में सलाह करने के पश्चात बिशप बचाव कार्य करते हैं देते हैं। यह चारों इस लकवे से पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए एक नियुक्त किए जाते हैं। वह उसके खुद से गिरजा आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, उन्हें घर भेंट करने जाना होता है। जाने के द्वारा वे उसे ढूंढकर पाते हैं और इसलिए वे जाते हैं। व्यक्ति को यीशु तक लाया जाता है और लोग एक लकवे के रोगी को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, क्योंकि कमरा बहुत भरा हुआ था। वे दरवाजे के अंदर से नहीं जा सकते थे। मुझे यकीन है उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, परंतु वे उससे जा नहीं सके होंगे। चीजें वैसी नहीं हो पाती हैं जैसी उनकी योजना बनाई जाती है। बचाव कार्य के रास्ते में वहां बाधाएं भी साथ होती है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने लकवे के रोगी व्यक्ति को दरवाजे पर नहीं छोड़ दिया था। उन्होंने एक साथ सलाह की कि आगे क्या करना है, कैसे वे व्यक्ति को यीशु मसीह की चंगाई के लिए ला सकते हैं। यीशु मसीह की आत्माओं से के बचाव कार्य में मदद करने, खासतौर पर उनके लिए कभी भी अपेक्षित नहीं रहा था। वे एक योजना के साथ आए थे जो आसान नहीं थी, परंतु उन्होंने उस पर काम किया था। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उसको उस छत को उसके नीचे वहां वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस घाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। वे उसे छत तक लाए थे। सोचिए, वहां पर बाहर कोई सीढ़ी उनके चढ़ने के लिए नहीं थी। उन प्रत्येक को छत पर पहुंचने के लिए कुछ समय जरूर लगा होगा। मैं सोचता हूं यह इस तरह से हुआ होगा, उस वार्ड का युवा पहले छत पर चढ़े होगा। जैसे वह जवान और पूरी ऊर्जा से भरा था, उसके लिए बहुत कठिन नहीं रहा होगा। उसके घर शिक्षक साथी एल्डर परिषद की ओर से और पूरे समय के प्रचार ने पूरे जोर से नीचे से जोर लगाया होगा। सहायता संस्था बहनों ने उन्हें ध्यान रखने और प्रोत्साहन करने के शब्दों से याद दिलाया होगा। व्यक्तियों ने तब छत खोली होगी, तथापि बहन ने लगातार व्यक्ति को दिलासा देती रही, जैसे वे चंगाई पाने का इंतजार करता था कि वह अपने आप खुद से हिल में योग्य हो और आजाद हो जाए। कार्य में हर एक को एक साथ काम करने की जरूरत है। निर्णायक लम्हों में ऐसे समय पर ध्यान पूर्वक सामान्य कर लकवे के रोगी व्यक्ति को छत से नीचे करना होगा। चारों व्यक्तियों को एकता और लय में काम करना होगा। वहां पर उन चारों के बीच में कोई मन मुटाव नहीं हो सकता था। उन्होंने लकवे के रोगी को सामान्य गति से नीचे उतारा। यदि कोई एक भी रस्सी को बाकी तीन से अधिक गति से छोड़ता, तो व्यक्ति उसके पलंग से गिर सकता था। वह कमजोरी की वजह से अपने आप को संभाल कर पकड़ नहीं सकता था। आदेश अनुसार उद्धारकर्ता के सहयोग में हमें कार्य को एक साथ एकता और लय में करना है। हर पद हर बुलाहट महत्वपूर्ण है। हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक होना होगा। आखिरकार रोगी लकवा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु के सम्मुख लाया था। यीशु ने उसको विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उस पर करुणा दिलाई और उसे चंगा किया, न सिर्फ शारीरिक तौर से अपितु आत्मिक तौर पर भी। हे प्रभु, मेरे पाप क्षमा किए, क्या यह अद्भुत नहीं था? क्या हमें पसंद नहीं होगा कि हम सबके साथ भी हो ऐसा हो?
是几咁美好呢？我哋会唔会都希望咁嘅事情同样发生喺我哋身上呢？我个人当然
美好嘅。क्या हम अपने जीवन में किसी ऐसे को जानते हैं जो आत्मिक लकवे का रोगी हो, कोई जो अपने आप से गिरजाघर वापस नहीं आ सकता हो? वह हम हमारा कोई एक बच्चा हमारे अभिभावकों से एक एक दंपति या एक मित्र हो सकता है। आप प्रत्येक गिरजाघर इकाई में कई अधिक पूरे समय के प्रचारक उपलब्ध हैं, बिशप और शाखा अध्यक्ष और अपने वार्ड और शाखा परिषद को इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। बिशप वार्ड परिषद के प्रत्येक सदस्य के नाम की सूची के साथ आमंत्रित करें जिन्हें मदद की जरूरत हो सकती है। वार्ड परिषद के सदस्य एक साथ ध्यानपूर्वक सलाह करें कि कैसे अच्छी सहायता दी जा सकती है। बिशप सतर्कता से सुझावों को सुने और कार्य बनाए। पूरे समय के प्रचारक वार्ड के इन बचाव कार्य को करने का प्रयत्न करने के अच्छे साधन हैं। वे जवान और ऊर्जा से भरे हैं। उन्हें विशेष लोगों के नामों की सूची के साथ काम करना प्रिय लगता है। वे वार्ड सदस्य के साथ कार्य करने में खुशी पाते हैं। वे जानते हैं उनके लिए ढूंढ पाने के बड़े मौके हैं। वे प्रभु के राज्य की स्थापना करने में श्रद्धालु हैं। उनके पास गहन गवाही है कि मसीह के समान और अधिक बन सकते हैं जैसे वे इस बचाव काम में भाग लेकर प्रयत्न करेंगे। संक्षिप्त में, क्या मैं आपके साथ एक और छिपा हुआ खजाना जो इस धर्मशास्त्र लेख में पाया जाता है बांट सकता हूँ? यह आयात 5 में है। जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, जो मैंने अतीत में इस पर ध्यान नहीं दिया था, उनका विश्वास, हमारे मिले हुए विश्वास, दूसरों की अच्छाई पर भी प्रभाव डालेंगे। वे कौन से लोग थे जिनका जिक्र यीशु ने किया था? वे शायद उन 4 में हो जो लकवे के रोगी को उठाकर लाए थे। व्यक्ति स्वयं भी, लोग जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना की थी, और वे वहां जो यीशु के प्रचार को सुन रहे थे, और स्वयं लोग जिनके लिए प्रार्थना की थी, वे सब वहां जो यीशु के प्रचार को सुन रहे थे, और अपने मनों में बेटा या बेटी, एक प्रचारक, एक परिषद, एक सहायता संस्था, अध्यक्ष, एक बिशप और एक दूसरे वाला मित्र भी शामिल हो सकते हैं। हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा जरूरतमंदों की जरूरत को ढूंढने के बचाव काम में सतर्क रहना चाहिए। मैं गवाही देता हूं कि यीशु मसीह चमत्कारों का परमेश्वर है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और हमारे पास बचाने और चंगा करने की दोनों शारीरिक और आत्मिक शक्ति है। जब हम उसकी आत्माओं को बचाव कार्य के उसकी सेवकाई में सहायता करते हैं, हम भी प्रगति में बचाए जाएंगे। और मैं आपके पवित्र नाम में साक्ष्य देता हूँ, यहाँ तक यीशु मसीह में, आमीन।
William Shakespeare's play, The Life of King Henry V, includes a nighttime scene in the camp of English soldiers at Agincourt, just before their battle with the French army. In the dim light and partially disguised, King Henry wanders unrecognized.
अपने जन को सांस को जांचने का प्रयास करते हुए उसने के साथ बात करने, जो कि विरोधी सेना के मुकाबले बहुत कमजोर थे, और क्योंकि वह नहीं जानते थे कि वह कौन था, उन्होंने ईमानदारी से अपनी राय दी। राजा के साथ अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने बातें की युद्ध में सैनिक सैनिकों के साथ एक बिंदु पर राजा हेनरी बोला, मैं सोचता हूं कि मैं किसी अन्य स्थान में मरने की तुलना में राजा की सेना में मरना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि उसका उद्देश्य न्यायपूर्ण है। माइकल विलियम्स ने जवाब दिया, यह बात हमारी समझ के परे है। उसका साथी समर्थन करता है, हाँ, और यह जितना हमने समझना चाहिए यह उसके अधिक है, क्योंकि हमारे लिए यह जानना पर्याप्त है कि राजा के अधीन है। यदि उसका उद्देश्य गलत है तो हम उसके लिए अपराधी नहीं हैं, क्योंकि हम मात्र उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। विलियम्स आगे कहता है, यदि राजा का उद्देश्य सही नहीं है, फिर इसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है राजा ही उन सब के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें कोई इशारे नहीं है कि राजा उनसे सहमत नहीं होता। राजा के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का राजा के प्रत्येक दायित्व होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के आत्मा के लिए जिम्मेदार है। शेक्सपियर, जब कार्य गलत होने लगते हैं तब दूसरों या परमेश्वर पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति होती है। कभी कभी लोगों में देख रेख करने के अधिकार की अनुभूति महसूस होने लगती है और व्यक्ति या समूह अपनी देख रेख की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर या सरकार पर डालने का प्रयास करते हैं। आतंकवादियों में कुछ मानते हैं कि पुरुष और स्त्रियों को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक होने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम जैसे भी हमें बचाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे उन्हीं दी गई नैतिक स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करें, क्योंकि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के पापों को लिए जिम्मेदार होगा। यह उसकी योजना और इच्छा के है कि हम अपने जीवन के नाट्य में निर्णय लेने की मुख्य भूमिका हमारी है। परमेश्वर हमारे जीवनों पर नियंत्रण रखता और ना ही हमें अपनी कठपुतली बनाता है। जैसा एक बार लूसीफर की योजना पेश की थी, ना ही परमेश्वर के स्थान पर उसके भविष्यवक्ता अपने हाथों कठपुतली रचाने की कोई भूमिका स्वीकार करेंगे। ब्रिगम यंग ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि इस संसार में और ना ही स्वर्ग में कोई अंतिम दिनों का संत जो मैं करता हूँ उसे संतुष्ट हो, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्रकटीकरण की आत्मा उन्हें संतुष्टि ना दे। मैं चाहता हूँ वह समय जाने और समय समझे। वैसे एक तो परमेश्वर में हमें उस अवस्था में नहीं बचाता जिसमें हम वर्तमान में हैं, क्योंकि वर्तमान अवस्था में हम अशुद्ध हैं और कोई अशुद्ध वस्तु उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकती, क्योंकि आदम की आभाषा में परमेश्वर का नाम पवित्रता से परिपूर्ण व्यक्ति है और उसके इकलौती पुत्र का नाम पवित्रता से परिपूर्ण व्यक्ति है। और दूसरा, परमेश्वर हमें वैसा नहीं बनाने के लिए कुछ नहीं करेगा जिसे हम अपने कार्यों द्वारा नहीं बनना चाहते हैं। सच में वह हमें प्यार करता है, और क्योंकि वह हमें प्यार करता है इसलिए वह ना तो बाध्य करता है और ना ही हमारा त्याग करता है। असल में वह हमारी मदद और मार्गदर्शन करता है। अवश्य है कि उसके प्रेम का वास्तविक प्रदर्शन उसकी आज्ञा है। हमें परमेश्वर द्वारा स्थापित योजना में आनंदित होना चाहिए, और हम होते भी हैं। जो हमें अपने समय के लिए कार्य करने और उसके परिणामों का अनुभव करने की अनुमति देता है, या जैसा धर्मशास्त्र इसे बताते हैं, अनुचित कार्यों के परिणामों का अनुभव करना, ताकि हम उचित कार्यों में के परिणामों के महत्व को समझ सकें। हम आरंभिक पाप पर विजय पाने के लिए उद्धारकर्ता के हमेशा भारी हैं, कि हम इस संसार में जन्म ले सके और फिर भी आदम का उल्लंघन के लिए दंडित ना किए जाए। क्योंकि हम पतन से मुक्त किए गए हैं, इसलिए हम अच्छे और बुरे के ज्ञान के साथ हमेशा के लिए स्वतंत्र के लिए गए हैं। अपने स्वयं के प्रति कार्य करने के लिए और ना ही उसके कार्य करने जाने के लिए हम उस प्रकार का व्यक्ति बनने का चुनाव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और परमेश्वर की सहायता से हम उसके सम्मान बन सकते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार हमें बताना चाहता है कि उसके लिए अवसर उपलब्ध करता है। यीशु मसीह के बलिदान और उसके अनुग्रह के द्वारा दिव्य व्यवस्था का पूरी तरह से और निरंतर पालन करने में हमें विफलताएं और को मिटाया जाता सकता है, और हम मसीह समान चरित्र का विकास कर सकते हैं। हालांकि न्याय की मांग है, बिना हमारी सम्मति और भागीदारी के इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। पृथ्वी का शारीरिक रूप से हमारी उपस्थिति उस चुनाव का परिणाम है जो हमें पिता की योजना में भाग लेने के लिए किया गया था। इसलिए हमारा उद्धार निश्चित रूप से हमारी इच्छा का परिणाम नहीं है, और ना ही मात्र दिव्य इच्छा के द्वारा हो सकता है। न्याय परमेश्वर का अति आवश्यक गुण है। हम परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वह पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है। धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर टेढ़े पथों पर नहीं चलता, ना ही दाएं मुड़ता है, ना ही बाएं, और ना ही वह कहता है जिससे वह पलट जाए। इसलिए उसके पथ सीधे हैं और उसका मार्ग एक अनंत परिधि है, और परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन वह हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हम विश्वास, साहस और आशा के लिए न्याय के दिव्य गुण पर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन परिपूर्ण न्याय संगत होते हुए भी कुछ बातें जो परमेश्वर नहीं कर सकता, वह कुछ को बचाने के लिए और अन्य को दंड देने के लिए पक्षपात नहीं कर सकता। वह पाप को थोड़ी मात्रा में भी स्वीकार नहीं कर सकता। ये दया के सिद्धांत को न्याय के सिद्धांत पर विजय पाने की अनुमति नहीं दे सकता। ये तथ्य कि परमेश्वर ने दया के सिद्धांत को स्थापित किया है एक प्रेरक प्रमाण है कि वह निष्पक्ष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह न्यायी है। इसलिए उसने हमारी अनंत नियति में मुख्य भूमिका अदा करने के लिए दया का मार्ग स्थापित किया। इसलिए अब न्याय उसकी सारी मांगों के अनुसार काम करता है और दया भी उस पर अपना अधिकार जताती है। हम जानते हैं कि उसके कष्टों और मृत्यु के लिए उसने पाप नहीं किया था। उसने और उसके पुत्र के उस लहू से पिता बहुत प्रसन्न था, क्योंकि जो कि बहा गया था, जो कि न्याय की मांग की पूर्ति करता, हमें दया और मुक्ति दिलाता है। फिर भी न्याय के अनुसार परीक्षा के इस समय में मनुष्य द्वारा बिना पश्चाताप किए केवल मुक्ति की योजना को अमल में नहीं लाया जा सकता। पश्चाताप के लिए यह एक आवश्यकता और एक अवसर है जो कि दया को बिना न्याय को कुचले कार्य करने की अनुमति देता है। लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से बचाने के लिए मसीह नहीं मरा, उनके पश्चाताप के अवसर का प्रदान करने के लिए उसने जान दी थी। पश्चाताप की प्रक्रिया में हम पूर्ण रूप से उसके गुणों पर निर्भर होते हैं जो कि प्रचार में प्राकर्मी है। लेकिन पश्चाताप के लिए कार्य करना स्वयं की इच्छा में परिवर्तन होना है, ताकि पश्चाताप का अनुग्रह का उपहार पाने की एक शर्त बनाते हुए परमेश्वर हमें समय की जिम्मेदारी कायम रखने के लिए योग्य बनाता है। पश्चाताप नैतिक स्वतंत्रता का आनंद, आदर और सामर्थ्य करता है, और इस प्रकार दया न्याय की मांग को पूरा कर सकता है और सुरक्षा के शस्त्रों से उसे घेरता है। जबकि वह जो पश्चाताप के प्रति विश्वास नहीं बढ़ाता है, उसे न्याय की मांग के पूरे न्याय नियम के लिए उजागर कर दिया जाता है। इसलिए केवल उसके लिए मुक्ति की महान अनंत योजना है जो पश्चाताप के प्रति विश्वास करता है। परमेश्वर के न्याय और दया को गलत समझना एक बात है, और परमेश्वर के अस्तित्व या सर्वोच्चता का इनकार करना अलग बात है। लेकिन दोनों के परिणाम स्वरूप हम कम सफलता प्राप्त करेंगे जितनी हमारी दिव्य योग्यता है, उससे बहुत ही कम। ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों से कुछ आशा नहीं करता, जो उस परमेश्वर के अस्तित्व में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर को जो अपने बच्चों को संभालने और परिपूर्ण बनाने के लिए नैतिक व्यवस्था स्थापित करता है के बिना संसार, परम सत्य या न्याय के बिना संसार है। एक ऐसा संसार है जिसमें शस्त्र स्वीकार किया जाता है कि हर किसी के लिए सही और गलत अलग अलग है। सापेक्षतावाद का अर्थ प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपना समय के उच्चतम अधिकारी हैं। अवश्य ही यह केवल वह नहीं है जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और सिद्धांत का अनुसरण और विश्वास करते हैं। बेशक बहुत से जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो भी विश्वास करते हैं कि वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं कि क्या सही और गलत है। एक नौजवान ने इस तरह से इसे व्यक्त किया है, मैं नहीं सोचता कि मैं यह कह सकता हूं कि हिंदुत्व गलत है या कैथोलिक गलत है या एपिस्कोपलिक गलत है। मैं सोचता हूं कि यह केवल इस पर निर्भर करता है आप क्या विश्वास करते हैं। मैं नहीं सोचता कि सही और गलत होता है। अन्य से उसके धार्मिक विश्वास के आधार के विषय में पूछा गया। उसका उत्तर था, मैं स्वयं में विश्वास करता हूं, वास्तव में सारा निचोड़ यही है। मेरा मतलब है, तुम किस पर विश्वास करते हो, इसके लिए कोई और कैसे अधिकार रख सकता है? कोई आप पर बल डाल सकता है और कह सकता है कि तुम्हें इस पर विश्वास करने की जरूरत है? लेकिन आप अपने आप पर किसी में विश्वास करने के लिए बल नहीं डाल सकते। बल डालना चुनाव करना नहीं है। जो विश्वास करते हैं कुछ या समय सच्चाई हो सकती है। कई संबंधी निश्चित और सर्वव्यापी सच्चाई की घोषणा बल द्वारा शासन करना लगता है। मुझे उस बात पर सच होने का आश्वास करने के लिए वादे नहीं किया जाना चाहिए जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उससे वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता। कृतत्व के नियमों का पसंद नहीं करना वाली गिरने से बच सकता यदि वह पहाड़ से चढ़ लगाता है। यह सच्चाई अनंत व्यवस्था और न्याय के साथ भी है। स्वतंत्रता इसका विरोध करने से नहीं आती, लेकिन इसे लागू करने से आती है। यह परमेश्वर की समय की शक्ति का मूल आधार है। यदि यह स्थिर और अपरिवर्तनीय सच्चाइयों के लिए नहीं है तो चुनने का उपाय बेमानी है, क्योंकि हम कभी भी अपने कार्यों के परिणामों पहले से देखने और विचार करने के योग्य नहीं हो सकते। संसारिक और आत्मिक दोनों विषयों में स्वयं के लिए जिम्मेदार होने का अवसर एक परमेश्वर से मिला उपहार है, जिसके अभाव में हम परमेश्वर की बेटियों और बेटों के रूप में अपनी पूर्ण शक्ति महसूस नहीं कर सकते। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही जाते हैं, जिसका हमें निरंतर बचाव करना चाहिए। सृष्टि की रचना से पूर्व भी इस पर आक्रमण किया गया है। हमें व्यक्तियों और योजनाओं के विरुद्ध उत्तरदायित्व का बचाव करना चाहिए, जो कि कभी कभी उत्तम उद्देश्यों के चलते हमें उन पर आश्रित कर देता है और अपनी प्रतिभा, योग्यता और मसीह सम्मान चरित्र को विकसित करने के लिए आवश्यक कामों में हमें अपने समय को गलत झुकावों में इसे बचाना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी कही जाती है जो बस काम नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। उसकी सोच के अनुसार गिरजा या सरकार या दोनों पर उसे जीने का साधन देने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह अपना करों और अपने दशमांश का भुगतान करता था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने समय की देखरेख के लिए काम करने से मना कर दिया। निराशा और असंतोष के कारण जिन्होंने उसकी मदद करने का प्रयास किया था, निश्चय किया क्योंकि मैं समय को सहारा देने के लिए हाथ नहीं हिलाता, इसलिए उसे कब्रिस्तान ले जाकर छोड़ देते हैं और वहीं उसे मरने देते हैं। कब्रिस्तान ले जाते समय एक व्यक्ति बोला, मेरे पास कुछ मक्के हैं, क्या मैं उसे दे दूं? तो उसने उस व्यक्ति को समझाया जिसे वह ले जा रहे थे। उसने उसे पूछा, क्या मक्का छिली हुई है? उसने जवाब दिया, नहीं। तो फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे कब्रिस्तान ही ले चलो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वतंत्र स्त्री और पुरुष बनकर सांसारिक और आत्मिक दोनों तरह से अपनी पूर्ण शक्ति का विकास करें, ताकि हम गरीबी के अपमानजनक बंधनों से और पाप के दासत्व से स्वतंत्र हों, ताकि हम आत्मसम्मान और आजादी का आनंद लें, ताकि हम उसके सेलेस्टियल राज्य की उन सब बातों में शामिल हो सकें जिसके लिए हम तैयार हो सकें। मैं इस असत्य विचार पर विश्वास नहीं करता कि हम अपने समय के प्रयासों में से प्राप्त कर सकते हैं बिना उसकी मजबूती और स्थायी सहायता के बिना। हम जानते हैं कि हम जो कर सकते हैं उन सबको करने के पश्चात भी हम उसके अनुग्रह द्वारा बचाए जाएंगे, और इससे पहले कि परमेश्वर मदद करे, हमें कुछ न्यूनतम स्तर की क्षमता या अच्छाई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। दिव्य मदद प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारी हो सकती है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज्ञाकारिता में हम अब कहाँ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी मदद से अधिक हमें समय परिश्रम करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर का चुनाव करना चाहिए, ताकि वह हमारे जीवनों में न्याय और नैतिक स्वतंत्रता के अनुकूल कार्य कर सके। मेरी याचना मात्र जिम्मेदारी लेने और काम करने की है, ताकि परमेश्वर हमारे सभी की इच्छाओं और प्रयासों को प्रयोग करते हुए हमारी सहायता कर सके। मैं गवाही देता हूँ कि परमेश्वर पिता जीवित है और उसका पुत्र यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, और कि पवित्र आत्मा हमारे साथ उपस्थित है। वह वास्तव में हमारी सहायता करना चाहते हैं और ऐसा करने की उनकी क्षमता असीमित है। आओ हम जागें और धूल से उठें कि अनंत पिता के अनुबंध पूरे हो सके जिन्हें उसने तुम्हारे साथ बनाया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
If I had been
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have provided this morning. Our concluding speaker for this session will be President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the
इस अधिवेशन के हमारे अंतिम वार्ताकार अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ प्रथम अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार हैं। उनकी टिप्पणी के बाद इस सभा की समाप्ति के गायक मंडली गीत गाएगी From All That Dwell Below the Skies. समापन प्रार्थना एल्डर ब्रेडली डी फॉस्टर 70 के द्वारा दी जाएगी।
Before this conference weekend, some asked me if I would speak in German. And I said no, but it may sound like it. As an airline pilot, I flew numerous hours across.
हवाई जहाज के पायलट के रूप में मैंने रात के अंधकार में अनगिनत घंटे द्वीपों और सागरों के पार उड़ान भरी है। अपने कॉकपिट की खिड़की से रात के आकाश को देखते हुए विशेषकर आकाश गंगा को देखकर मैं परमेश्वर की रचना की विशालता और गहराई धर्मशास्त्र जिसकी व्याख्या असंख्य संसारों के रूप में करते हैं पर अक्सर आश्चर्य करता था। एक शताब्दी पहले तक अधिकतर ज्योतिर्विद कल्पना करते थे कि हमारी आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में एकमात्र आकाशगंगा है। वे मानते थे कि हमारी आकाशगंगा से आगे कुछ नहीं है, केवल एक असीमित शून्य खाली ठंडा स्थान है और कोई तारा प्रकाश और जीवन नहीं है। जैसे जैसे अधिक विकसित टेलीस्कोप बने, एक ऐसा टेलीस्कोप जिसने अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सके, जो ज्योतिर्विदों ने शानदार लगभग अल्पकालीन सच्चाई को समझा, आरंभ किया कि ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी पहले किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि आकाश अनगिनत आकाश गंगाओं से भरा पड़ा है जो कि हमसे अकल्पनीय रूप से दूर है और प्रत्येक में लाखों करोड़ों तारे हैं। बहुत थोड़े समय में ब्रह्मांड के विषय में हमारी समझ पूरी तरह बदल गई। आज हम इन में से कुछ आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि वे वहां पर हैं। वे बहुत वहां पर बहुत लंबे समय से हैं। लेकिन इन दिव्य प्रकाश और आकाश गंगाओं को देखने के लिए मानव के पास शक्तिशाली उपकरण आने से पहले हमारे विश्वास नहीं किया कि ऐसा संभव था। ब्रह्मांड की विशालता अचानक नहीं बदली, लेकिन इस सच्चाई को देखने और समझने की हमारी योग्यता प्रभावशाली रूप से बदल गई है और इस अतिरिक्त ज्ञान के साथ मानव जाति का शानदार हृदय दृश्य से परिचय कराया गया जिसकी पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जिसे हम नहीं देख सकते उस पर विश्वास करना हमारे लिए कितना कठिन होता है। मान लो हम समय में वापस जा सकते और उन लोगों से बात कर सकते जो हजारों और या सैकड़ों साल पहले रहते थे। उन्होंने आजकल कि इस उन तकनीकों के बारे में समझने की कल्पना करें जिसमें आप और मैं आज अच्छी तरह परिचित हैं। उदाहरण के लिए वे लोग क्या सोचते यदि हम उन्हें जंबो जेट माइक्रोवेव ओवन टैबलेट के बारे में बताते जिसमें विशाल डिजिटल सूचनाएं और हमारे नाती पोतों की वीडियो है जिन्हें हम पलक झपकते ही संसार में सैकड़ों लोगों को दिखा सकते हैं। कुछ हम पर विश्वास करते हैं, कुछ बहुत से मजाक उड़ाएंगे, विरोध कर सकते हैं या हमें मार भी सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ उन तर्कों विचारों और तथ्यों को लागू करने का प्रयास कर सकते हैं जिन्हें वे जानते हैं ताकि वे यह दिखा सके कि हम गुमराह मूर्ख या तक कि खतरनाक लोग हैं। वे हमें दूसरों को गुमराह करने के लिए दंडित भी कर सकते हैं, लेकिन अवश्य ही ये लोग पूरी तरह से गलत साबित होंगे। हो सकता है वे समझने का प्रयास करें और ईमानदार हों, वे अपने विचारों को पूरी तरह से सही कहेंगे, लेकिन वे हमारी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अधिक परिपूर्ण सच्चाई का ज्ञान तब मिला नहीं था। ऐसा लगता है कि यह कल्पना करना मानवता की परंपरा हो गई है कि हम सही हैं चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, और यदि यह सच है तो क्या हमारे लिए कोई आशा है? क्या हम अपना जीवन बिना सच्चाई जाने जिएंगे? क्योंकि संचार में बहुत सारी परंपरा विरोधी विचारधाराएं हैं और हम केवल अपनी स्वयं की समझ और धारणाओं में भरोसा करेंगे। क्या सच्चाई को प्राप्त करना संभव है? मेरी वार्ता का उद्देश्य इस आनंददायक संदेश की घोषणा करना है जो हमारे परमेश्वर सेनाओं के प्रभु के ने स्वयं दिया था, जो कि संपूर्ण सच्चाई को जानता है। उसने अपनी संतान की प्रतिज्ञा की कि वे सच्चाई को स्वयं जान सकते हैं। कृपया इस प्रतिज्ञा के महत्व पर ध्यान दें। अनंत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता उन्हें बातें करेगा जो एक सच्चे हृदय और वास्तविक इच्छा से उनके निकट जाता है। वह सपनों में, दिव्य दर्शनों में, विचारों और अनुभूतियों द्वारा बात करेगा। वह उस तरह से बातें करेगा जो सुस्पष्ट और मानव कल्पना में से परे हैं। वह उन्हें दिव्य निर्देशन देगा और उनके निजी जीवनों का पथ प्रदर्शन करेगा। अवश्य ही ऐसे लोग होंगे जो मजाक उड़ाते और कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं असंभव हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर होता तो वह एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के बजाय उसे बेहतर कार्य करता। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वह आपके निजी प्रश्नों को सुनेगा और उनका जवाब देगा। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसके तरीके और उसके समय में आता है, और इसलिए आपको उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है आपके उसके पास वापस जाने के मार्ग की खोज करें, और उद्धारकर्ता ही मार्ग है। परमेश्वर चाहता है आप उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में जानें और उस आध्यात्मिक शक्ति और आनंद को अनुभव करें जो दिव्य दृश्यता के मार्ग पर चलने से मिलता है। प्रिय मित्रों, एक बहुत सरल प्रयोग परमेश्वर की गारंटी सहित प्राचीन धर्मशास्त्र की एक पुस्तक में पाया गया है, क्योंकि उन प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चों को उपलब्ध है जो वास्तव में इसकी जांच करना चाहते हैं। पहला, आपको परमेश्वर के वचन की खोज करनी चाहिए। इसका मतलब है धर्मशास्त्रों को पढ़ना और यीशु मसीह के पुनः स्थापित सुसमाचार के बारे में प्राचीन और वर्तमान भविष्यवक्ताओं के शब्दों का अध्ययन करना, संदेह या आलोचना करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई की खोज करनी और सच्ची इच्छा के साथ जो बातें आप महसूस करते हैं उन पर मनन करें और अपने मनों को सच्चाई पाने के लिए तैयार करें। यदि तुम इस पर विश्वास करने की केवल इच्छा करोगे, तब इस इच्छा को अपने अंदर तक रहने देना जब तक कि तुम इस प्रकार विश्वास करने लोगों कि तुम परमेश्वर की बातों के एक अंश को स्थान दे सको। दूसरा, आपको विचार मनन निडर होकर विश्वास करने का प्रयत्न करना है और आभारी होना चाहिए कि प्रभु अपने बच्चों के लिए आदम के समय से लेकर हमारे समय तक उसके गिरजे का मार्गदर्शन करने के लिए हमें उसके पास वापस जाने का मार्ग खोजने में मदद करने के लिए भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकाश उपलब्ध कराते हुए बहुत दयावान रहा है। तीसरा, आप को स्वर्गीय पिता से उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह गिरजे की सच्चाई आप पर प्रकट करने के लिए दी है। सच्चे हृदय के साथ वास्तविक उद्देश्य में मसीह विश्वास करने के लिए पूछो। एक चौथा कदम, हमें उद्धारकर्ता द्वारा दिया गया है, क्योंकि की इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस सिद्धांत के विषय में जाना चाहिए कि वह परमेश्वर की ओर में है। यदि अपनी ओर से कहता है, अन्य शब्दों में जब आप समाचार नियमों की सच्चाई की जांच करने का प्रयत्न करते हो तो वह प्रत्येक आपको अनुसार चलना चाहिए। यदि आप इस बात को करते हैं तो आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो कि अपने वचन से बंधा है कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप पर सच्चाई प्रकट करेगा। वह आपको बहुत अधिक प्रकाश देगा जिसके द्वारा आप अंधकार में देख पाओगे और उन अकल्पनीय दृश्यों की गवाह बनोगे जिसके सांसारिक आंखों में देख सकता है। कुछ कह सकते हैं कि यह बहुत कठिन है या ये कहना करने लायक नहीं है, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि सुसमाचार और गिरजे की यह निजी गवाही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप इस जीवन में कमा सकते हैं। यहां न केवल आपको इस जीवन में आशीष देगी और मार्गदर्शन करेगी बल्कि प्रभाव आपके अंतकाल के संपूर्ण जीवन पर पड़ेगा।
Not only bless and guide you during this life, but it will have a direct bearing on your life throughout eternity. Scientists were struggling.
आत्मा की बातों को केवल आत्मा द्वारा ही समझा जा सकता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के आकार को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब तक कि उपकरण इतने परीक्षण नहीं हो गए थे कि अचानक ज्ञान प्रमाण सच्चाई को समझ सके। प्रेरित पौलुस ने आत्मिक ज्ञान के विषय में इस प्रकार का नियम सिखाया था, संचारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। उसने कुरिन्थियों में लिखा है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें ज्ञान जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अन्य शब्दों में, यदि आप आत्मिक सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आपको सही उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। आप उन उपकरणों में से आत्मिक सच्चाई को नहीं समझ सकते जो इसकी जांच करने में उपयोग हैं। उद्धारकर्ता ने हमारे समय में कहा है कि जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर का है, और जो प्रकाश को ग्रहण करता है और परमेश्वर में निरंतर प्रत्यनशील रहता है अधिक प्रकाश ग्रहण करता है, और यह प्रकाश अधिक चमकीला होता जाता है और एक परिपूर्ण दिन बन जाता है। जितना अधिक हम अपने हृदय और मनों को परमेश्वर की ओर ले जाएंगे उतना अधिक स्वर्गीय प्रकाश हमें प्राप्त होगा, और जितना हम मन और उत्सुक से उस प्रकाश को पाने का प्रयत्न करते हैं हम परमेश्वर को अधिक प्रकाश ग्रहण करने की अपनी तैयारी को प्रकट करते हैं। जो बातें पहले धुंधली अंधकारपूर्ण और असंगत लगती थीं, धीरे धीरे अधिक स्पष्ट चमकीली और जानी पहचानी लगने लगती हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने आप को समाचार के प्रकाश के दूर करते हैं तो हमारा स्वयं का प्रकाश कम होने लगता है, एक दिन और या सप्ताह में नहीं लेकिन समय के साथ धीरे धीरे, जब तक कि हम वापस मुड़कर नहीं देखते और ठीक से समझ नहीं पाते कि हमने क्यों यह विश्वास किया था कि सुसमाचार सच्चा था। हमारा पिछला ज्ञान हमें कभी मूर्खपूर्णता भी लग सकता है, क्योंकि जो कभी बहुत स्पष्ट था फिर से धुंधला स्पष्ट और अलग हो जाता है। इस कारण पौलुस अपने विश्वास के इतना दृढ़ था कि सुसमाचार का संदेश नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु जो उधार पाए हैं यह परमेश्वर का समर्थ है। कोई लिटमस परीक्षण नहीं है। अंतिम दिनों में के संतों का यीशु मसीह गिरजा सभी प्रकार के लोगों की गवाहियों का एक स्थान है। गिरजे के कुछ सदस्य जिनकी गवाही विश्वत और बहुत मजबूत हैं, अन्य इसे स्वयं पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गिरजा सभी के लिए मिलकर रहने का घर है, चाहे हमारी गवाही कैसी भी क्यों ना हो। हमारे सभागृह के द्वार पर ऐसा कोई प्रतीक नहीं होता जो कहता है यहाँ प्रवेश करने के लिए आपका गवाही इतनी मजबूत होनी चाहिए। गिरजा केवल परिपूर्ण लोगों के लिए नहीं बल्कि यह सबके लिए मसीह के पास आने और उसमें परिपूर्ण होने के लिए है। गिरजा आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए है। गिरजा स्वागत और पोषण करने का स्थान है, ना कि अलग या आलोचना करने का स्थान। यह एक स्थान है जहां पर हम एक दूसरे को उत्साह देते, ऊपर उठाते और समर्थन करते हैं जब हम अपनी निजी दिव्य सच्चाई की खोज करते हैं। आखिरकार हम सब यात्री हैं जो श्रेष्ठता के मार्ग पर चल परमेश्वर के प्रकाश की खोज कर रहे हैं। हम किसी के प्रकाश की मात्रा के आधार पर उसकी निंदा नहीं करते, चाहे उसके पास प्रकाश है या नहीं, बल्कि हम सभी प्रकाश का तब तक पोषण और उत्साहित करते हैं जब तक यह स्पष्ट, उज्ज्वल और सच्चा ना हो जाए। हम सबसे स्वीकार करें कि बहुत भार गवाही पाना एक मिनट या एक दिन या रात का एक समय नहीं है होता। यह एक बार के लिए जाने वाला कार्य नहीं है। आत्मिक प्रकाश पाने के लिए जीवन भर में चलने वाली यात्रा है। जीवित परमेश्वर के पुत्र और उसके पुनर्स्थापित गिरजा, अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे की आपकी गवाही, आपकी इच्छा अनुसार चुटकी बजाते नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि आप अपना कार्य करते रहें तो यह अवश्य मिलेगा और यह महिमापूर्ण होगी। मैं आपको अपनी निजी गवाही देता हूँ कि आत्मिक सच्चाई आपके हृदय को भर देगी और आपकी आत्मा को प्रकाशित करेगी। यह आनंद में खुशी और स्वर्गीय शांति के साथ आपको असली ज्ञान प्रकट करेगी। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा इस स्वयं महसूस किया है। जैसा प्राचीन धर्मशास्त्र प्रतिज्ञा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपको मुक्ति भरे प्रेम गीत गाने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी आंखें स्वर्ग की ओर उठेगी और आपकी आवाज को परम प्रधान परमेश्वर, आपका शरण स्थान, आपकी आशा, आपका रक्षक, आपके पिता की प्रशंसा के लिए ऊंचा उठाएगी। उद्धारकर्ता ने प्रतिज्ञा की है कि यदि आप खोजते हैं तो आपको मिलेगा। मैं गवाही देता हूं कि यह सच है। यदि आप परमेश्वर की सच्चाई को खोजते हैं जो कि अभी धुंधली पहुंच से और नजरों से दूर प्रतीत होती है, परमेश्वर के प्रकाश की महिमा से धीरे धीरे प्रकट होकर स्पष्ट और आपके हृदय के निकट हो जाती है। वे अद्भुत आत्मिक दृश्य और जो मनुष्य की आंख के लिए अल्पकनीय आंखों को दिखाई देंगे। यह मेरी गवाही है कि आत्मिक प्रकाश परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध है। यह आपके मन को प्रकाशित करेगा, आपके हृदय को दिलासा देगा और आपके दिनों में आनंद लाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के दिव्य कार्य के प्रकाश और सच्चाई की अपनी निजी गवाही को पाने और मजबूत करने का पल के लिए कृपया देर न करें। सच्चाई और प्रकाश की आपकी निजी गवाही न केवल आपको और आपके वंश को इस नश्वर जीवन में आशीषित करेगी, बल्कि यह आपके साथ संपूर्ण अनंत काल तक अंतहीन संसार में बनी रहेगी। मैं इनकी गवाही और आपको अपनी आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Our Heavenly Father,
as we... हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, इस समय हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. जो भी हमने सुना अपने, हम धन्यवाद करते हैं गाने का. हम इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करते हैं जो संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं. हम जीवित भविष्यवक्ताओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे समय में आगे बढ़ाते हैं. और हम मिशनरीज के लिए धन्यवाद करते हैं. और इस समय हम लोग उनके माता पिता और उनके दादा दादियों पर, ताकि उनके पास शांति रहे. और पिता, जैसे आगे जाते हैं, हमारे गवाहियों को बढ़ाइए ताकि हम सैक्रमेंट को और ज़्यादा बलाई दे सकें और अपने अपनी आज़ादी को समझ सकें और रोशनी और सच्चाई को देख सकें. और जो हम संदेश हम सीख सकें, हमारे दिल पे आ सकें. और जो भी हम संदेश सुनते हैं वो हमारे दिल में रहे. और इन सब हम लोग यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Thank you.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का प्रथम सत्र 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन था। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया। संगीत मार्बल मंडप गायक मंडी द्वारा दिया गया था। इसका प्रसारण बॉनेवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।